Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aur ye jo indriya hai, rishi shabd ka sabut, inke visheshan hai atharvangi rasam. अथर्वांगी रसाम ऋषि नाम, एक ऋषि शब्द होता है रूढ़, जो मंत्र के दृष्टा होते हैं उनको भी ऋषि कहा जाता है, लेकिन यहां वे ऋषि नहीं जिन्होंने समाधि अवस्था में वैदिक मंत्रों का दर्शन किया, वे भी ऋषि शब्द का अर्थ होता है। ऋषयो मंत्र दृष्टार इस वाक्य के अनुसार, लेकिन यहां ऋषि शब्द का अर्थ इंद्रिया है। भाष्य में शंकराचार्य जी महाराज ने ऋषि शब्द का अर्थ इंद्रिया ही कर दिया है, और उपनिषदों का अर्थ समझने के लिए जितना प्रामाणिक श्रद्धे शंकर भाष्य है उपनिषद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए, उतना तो अन्य नहीं ना, क्योंकि एक सर्वज्ञात मुनि नाम के बड़े विद्वान हुए, सर्वज्ञात मुनि, संक्षिप्त शारीरक नाम का एक ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र का, वो उसमें श्लोकबद्ध व्याख्यान है संक्षिप्त शारीरक में, और उसके रचयिता है सर्वज्ञात मुनि, वे हैं सुरेश्वराचार्य जी के शिष्य। तो वो मंगलाचरण में कहते हैं कि वक्तार मासाद्य एवमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्वितासित निरस्त दुस्तर्क कलंक पंका नमामितम शंकर मर्चितांघ्रिम का, यानी इसमें वे कहते हैं नित्या सरस्वती एक नाम है वेद का, नित्या सरस्वती यानी वेद, और वेद से लेना यहां पर वेदों का ज्ञान कांड जिस पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, वो ज्ञान कांड वेद का वो है नित्या सरस्वती उपनिषद, और वो उपनिषद स्वार्थ समन्विता असीत, यानी उसको जो अभिप्रेत अर्थ है उपनिषदों का, जो मुख्यार्थ है अभिप्रेत अर्थ है, वही मुख्य अर्थ अभिप्रेत अर्थ से युक्त उपनिषदें हुई, लेकिन कब कहते यम वक्तारम आसाद्य, जिस वक्ता को प्राप्त करके उपनिषदों को, जो उनको अपना अर्थ अभिप्रेत था वही अर्थ प्राप्त हुआ, सामने आया उपनिषदों का जगत के, उपनिषद वक्ता यानी व्याख्याता, तो उपनिषद के जिस व्याख्याता को प्राप्त करने के बाद उपनिषदों को अपना जो अर्थ अपेक्षित था वही अर्थ उपनिषद अध्येताओं के सामने आया, जिस व्याख्याता को उपनिषदों ने प्राप्त किया उसके बाद आया वह व्याख्याता है शंकराचार्य जी, उनके चरण कमलों को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा उन्होंने मंगलाचरण किया है। तो सर्वज्ञात मुनि जैसे विद्वान कहते हैं कि उपनिषदों का मुख्यार्थ जो अभिप्रेत है उनको वो समझना है, तो शंकर भाष्य के माध्यम से समझा जा सकता है, और शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य में यहां पर ऋषि शब्द का अर्थ कर दिया इंद्रिया, और इंद्रियों का ही विशेषण है अथर्वांगी रसाम। वे इंद्रिय कैसी हैं, तो अथर्वांगी रस है, अंगी रस का, अंगी रस में अंगी शब्द का कहा जाता है, अंग कहते हैं शरीर के एक एक अवयव को अंग कहा जाता है, और अंगी कहा जाएगा शरीर को, अवयवी को। तो हस्त पादादि अंग हैं जिसके वह देह हुआ अंगी, अंगी रस शब्द में, और उस अंगी का यानी शरीर का जो रस के तरह रस है, रस कहा जाता है सार को। तो इस शरीर में जब तक ये कार्य स्थूल शरीर के अंदर इंद्रियां हैं और इंद्रियों के साथ प्राण है, तभी तक यह शरीर सरस माना जाता है, रसयुक्त माना जाता है। और ये निकल जाए इंद्रियां वगैरह सब, तो ये निरस हो जाता है। फिर इसलिए अंगी का यानी शरीर का जो रस है वो कौन है, जिसके शरीर में रहने से शरीर सरस हो, उसे कहा जाएगा अंगी रस। तो इंद्रियों के शरीर में रहने से शरीर सरस होता है, रसयुक्त होता है, इसलिए शरीर का रस माना जाता है इंद्रियों को। तो अंगी रसाम का अर्थ है शरीर के रसभूत, रसरूप वो कौन है, ऋषि शब्दित इंद्रिया, ये शरीर के रसभूत हैं। और वे ही अथर्वा भी हैं। अथर्वा कहा जाता है पुष्ट करने वाले को, अथर्वा शब्द का अर्थ होता है संपोषक। तो इस शरीर को पुष्ट रखते हैं, परिपुष्ट रखते हैं कौन, इंद्रिया ही, इस शरीर में रह करके वो उसका सार भी है और शरीर का संपोषण भी करते हैं। इसलिए ऋषि शब्दित इंद्रिया अथर्वा है और अंगीरस है। तो ये जो अथर्वा अंगीरस रूप इंद्रिया है उनका सत्यम चरितम, चरितम का अर्थ होता है प्रवृत्ति, आचरण, व्यापार, क्रियाएं, ये है इंद्रियों का चरित। वो दो प्रकार का, एक असत्य चरित और एक सत्य चरित। तो सत्य चरित है जिससे शरीर धारण ठीक से हो जाए, आयु शरीर निरोग रहे, शरीर लंबे समय तक चले, ऐसी इंद्रियों की प्रवृत्तियों को कहा जाता है सत्य चरित। और जिससे जिन इंद्रियों की प्रवृत्तियों से शरीर में अनेकों प्रकार के रोग आ जाए, धूम्रपान आदि हैं, मदिरापान आदि हैं, निषिद्ध आचरण है, निषिद्ध भोजन है, इन सब के भक्षण आदि से शरीर में अनेकों प्रकार के रोग होते हैं, वो है इंद्रियों का असत्य चरित। और सत्य चरित है इंद्रियों का वो शरीर धारणादि रूप, जिससे शरीर निरामय रहे यानी स्वस्थ रहे और लंबे समय तक अच्छी तरह से कार्यरत रहे, अंतिम तक पराधीन न हो सके, ऐसी इंद्रियों की प्रवृत्ति का नाम है ऋषि नाम सत्यम चरितम। और ये जो ऋषियों का इंद्रियों का सत्य चरित है वो भी कौन है, यदि प्राण न रहे तो प्राण मुख्य है इनमें, वागादि इंद्रिया ये कह रही है स्वयं कि हमारे अंदर जो ये सत्य चरित है वो आपके निमित्त से है, इसलिए आपका ही है, आप ही हैं। आप न हो तो हम ये सब नहीं कर सकते, इसलिए हमारी प्रवृत्ति आपके अधीन है, आप हमारे प्रवर्तक हैं, नियामक हैं। ये एक प्रकार से इन इंद्रियों के द्वारा स्तुति की जा रही है मुख्य प्राण की। नवम मंत्र है इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता त्वं अंतरिक्षे चरसी सूर्य त्वं ज्योतिषां पतिः। तो हे प्राण संबोधन है वागादि इंद्रियों के द्वारा मुख्य प्राण के लिए किया गया कि त्वं इंद्रोसी आप इंद्र हो। तो इंद्र शब्द का अर्थ होता है देवराज, लेकिन यहां देवराज अर्थ नहीं है। जैसे ऋषि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ होता है मंत्र दृष्टा ऋषि, लेकिन यहां लिया गया इंद्रिय अर्थ। ऐसे यहां इंद्र शब्द का प्रसिद्ध जो अर्थ है देवराज, वो न लेकर के यहां इंद्र शब्द का अर्थ है परमेश्वर। देवराज क्यों नहीं लिया जा रहा है, प्रसिद्ध अर्थ को क्यों छोड़ रहे हैं? तो इसलिए छोड़ा जा रहा है कि पहले मघवान एक शब्द आया और मघवान का अर्थ भी इंद्र होता है, देवराज होता है। तो मघवान शब्द से पहले यहां पर इंद्र की चर्चा हो चुकी है, इंद्र रूप बता दिया गया है प्राण को। और फिर इंद्र शब्द से भी देवराज इंद्र को ही लेंगे और फिर कहा जाएगा कि देवराज इंद्र भी आप हो, तो पुनरुक्ति हो जाएगी ना। पहले भी भगवान शब्द से कहा कि आप ही देवराज इंद्र हो, वो इंद्र बन करके पालन करते हो प्रजा का, और यहां पर भी आप ही इंद्र बन करके पालन कर रहे हो कहेंगे, तो दोबारा कहने से पुनरुक्ति दोष होगा। इस पुनरुक्ति और वेद तो निर्दोष है ना, वेद में कोई दोष हो नहीं सकता। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं इंद्र शब्द का यहां अर्थ है परमेश्वर, और आप ही परमेश्वर हो। हे प्राण त्वम इंद्रोसी यानी परमेश्वरो असी। तो ईश्वर कहते हैं शासक को, नियामक को, तो आप ही सारे संसार के नियामक हो स्थूल जगत के। सूत्रात्मा है ना, समष्टि प्राण है, और ये समष्टि प्राण ही सारे जगत को आश्रय दे करके सारे जगत को अपने नियमन में रखता है, इसलिए परमेश्वर है, नियामक है। और आगे कहा कि त्वम तेजसा रुद्रो असी, तो आप ही रुद्र भी हो। रुद्र का कार्य है संहार, तो जब जगत का संहार काल आता है, प्रलय काल आता है, उस समय आप ही इस जगत को अपने तेज से संघरित करते हो रुद्र रूप धारण करके, जो व्यवहार में कहा जाता है पौराणिकों के द्वारा कि संहार की देवता रुद्र हैं, वह रुद्र आप ही हैं। संहार काल में अपने तेज से इस सारे सृष्टि को अपने में समा लेते हो, और स्थिति काल में परिरक्षिता विष्णु रूप से आप ही इस जगत के रक्षिता भी हो। का मतलब इसी प्राण के ये विष्णु रुद्र जो पुराण में है एक विभूति विशेष है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी विभूति विशेष 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 बताया गंगादि पदार्थों को, ऐसे पुराण के रुद्र और ये विष्णु ये इस मुख्य प्राण जो सूत्रात्मा है वैदिक उनका एक अंश है, एक रूप है, विभूति जैसी है, स्थिति काल में विष्णु रूप धारण करके आप ही जगत की स्थिति कर रहे हो, संहार काल में आप ही रुद्र रूप धारण करके जगत का संहार कर रहे हो, और सूर्य रूप धारण करके सारे जगत का जो ये दिन रात को अलग अलग व्यवहार होता है, इस व्यवहार का पहले दिन और रात्रि ये जो दो विभाग होते हैं, इन विभागों का निमित्त क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त को लेकर के ही दिन रात होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच वाला जो समय है दिन कहलाता है, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय के बीच वाला समय रात कहलाता है। और ये दिन में होने वाला जो संसार का व्यवहार और रात्रि में होने वाला जो संसार का व्यवहार, इस व्यवहार का निर्वर्तन जब दिन और रात ये दो विभाग हो पहले समय के, तब इन अलग अलग समय में होने वाले व्यवहार निष्पन्न हो, और ये दिन रात का निष्पादन निष्पादक है सूर्य का उदय अस्त, और उदय अस्त के लिए आप अंतरिक्ष में निरंतर चलते रहते हो, विचरण करते रहते हो, ऐसा ये वागादि कह रहे हैं कि अंतरिक्षे यानी आकाशे त्वम चरसी यानी बिना विश्राम के निरंतर चलते जा रहे हो। उदय होने के बाद अस्त होने के लिए और अस्त के बाद फिर उदित होने के लिए कभी विश्रांति नहीं लेते हो, सूर्य बनकर के निरंतर आकाश में गति करते रहते हो। और ये सब किस लिए है? कि लोक व्यवहार की उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए। का मतलब आपका जो भी कार्य है वह लोकोपकारार्थ है, आप लोकोपकारी हैं, ये यहां पर बताया जा रहा है। जिससे जिससे लोगों का उपकार हो वह वह रूप धारण करके तत्तद उपकार आप ही कर रहे हो सारे लोगों पर। दसवें मंत्र में कहते हैं कि सबको सुख होता है जब उपभोग की सामग्री पर्याप्त मिल जाए, मिलने की संभावना दिखे तो पहले से ही आनंद होता है। तो इसलिए फिर जीवन चलाने के लिए आवश्यक सामग्री है भोजन की सामग्री पहले, बाकी सुख सुविधाएं तो बाद में, और अन्न की उपलब्धि होती है वर्षा से, इसलिए वर्षा यदि ठीक हो जाए तो कहा जाता है कि अब पैदावार भी अच्छी होगी, फसल अच्छी आएगी, ये लोग कहते हैं। तो दसवें मंत्र में यही कहा जा रहा है कि लोक जिससे खुश होते हैं, अधिक ठीक पर्याप्त वर्षा हो जाए तो वर्षा का रूप भी बरसने वाले पर्जन्य का रूप धारण करके भी आप ही वह उपकार भी कर रहे हैं लोगों पर। ये दसवें मंत्र में बताया जा रहा है कि यदा त्वम अभिवर्षसी अथे माह प्राणते प्रजा आनंद रूपा तिष्ठन्ती कामाय अन्नम भविष्यति इति। तो हे प्राण, यहां पर भी संबोधन है प्राणते, ये अलग अलग दो पद हैं प्राण और ते। तो हे प्राण, यदा त्वम अभिवर्षसि, पर्जन्य बन करके जब आप अभिवर्षण रूप व्यापार करते हो, जितनी वर्षा चाहिए बारिश चाहिए उतने बरसते हो, तो उस समय फिर ते प्रजा ते इमा प्रजा ऐसा लगाना, आपकी ते का अर्थ है आपकी और इमा प्रजा, ये जो हम लोग प्रजा है वो किसकी प्रजा है, प्राण की, प्राण तो प्रजापति है ना, और हम हैं प्रजा और हमारे पति यानी स्वामी परिरक्षक वो है प्राण सूत्रात्मा, ये पूरे ब्रह्मांड का अधिपति है सूत्रात्मा, संरक्षक है, और यही पर्जन्य बन करके जब खूब बरसते हैं और वर्षा पर्याप्त देखते हैं तो लोग आनंदित हो जाते हैं। क्यों आनंदित होते हैं, तो कहते हैं कामाय अन्नम भविष्यति इति, उनके आनंद मनाने का उत्साहित होने का निमित्त बताया जा रहा है कि इस वर्ष बारिश अच्छी हुई तो पर्याप्त अन्न होगा, कहीं भूखा रहने की आवश्यकता नहीं होगी, भूखमारी सताएगी नहीं, ये निश्चय करके वो सुखी हो जाती है प्रजा, आनंद मनाती, आनंद उत्सव मनाती है। तो प्रजा के आनंद उत्सव का निमित्त भी जो अभिवर्षण है वो अभिवर्षण रूप व्यापार करने वाले पर्जन्य बन करके वह उपकार भी आप ही करते हो। और आगे कहते हैं ग्यारहवें मंत्र में कि व्रात्यस्त्वं प्राणैकऋषि अत्ता विश्वस्य सत्पति ही वयम आद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिस्वनः। तो यहां पर भी प्राण और एकऋषि ऐसा अलग अलग निकालना, हे प्राण संबोधन है कि हे प्राण आप व्रात्य हो, तुम यानी आप और व्रात्य हो, जैसे पहले कहा कि प्रजापति स्तम का अर्थ है कि आप प्रजापति हो, इंद्रस्तम का अर्थ है आप परमेश्वर हो, ऐसे यहां पर कहा जा रहा है कि आप व्रात्य हो। तो व्रात्य शब्द का अर्थ होता है संस्कारहीन, जिसका संस्कार नहीं होता उसे कहा जाता है व्रात्य। तो आप संस्कारहीन हो, क्यों संस्कारहीन हो, तो कहते इसलिए कि प्राण ही तो सबसे पहले उत्पन्न होता है ना, ज्येष्ठ है ना, तो संस्कार करने के लिए पहले माता पिता संस्कार करते हैं बच्चे के, तो प्राण तो ज्येष्ठ है सब में, तो उसका संस्कार कौन करेगा, तो इसलिए कहते हैं कि कोई संस्कार करने वाला न होने से आप संस्कारहीन हो। तो अभिप्राय है संस्कार करने की आवश्यकता किसके होती है, जो अशुद्ध है उसका अशुद्धि निवारण रूप संस्कार किया जाता है, गुणाधान रूप संस्कार किया जाता है, जो संस्कार योग्य होगा। तो संस्कार योग्य दो होता है, जिसमें कोई गुण नहीं है तो उसमें ऊपर से गुण प्रदान किए जाते हैं, तो गुणाधान रूप संस्कार हुआ, और दोष है तो दोषापनयन रूप संस्कार हुआ। तो माना जाता है ये संस्कार दो प्रकार का। तो आप तो निर्दोष हो इसलिए दोषापनयन रूप संस्कार आपका हो नहीं सकता, और गुण तो आपके अंदर स्वाभाविक है इसलिए गुणाधान रूप संस्कार भी आपका हो नहीं सकता, दोनों प्रकार का संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए यहां व्रात्य कहा जा रहा है। व्रात्य कहने का अर्थ अभिप्राय तात्पर्य अर्थ भाष्कर भगवान ने निकाला कि आप स्वभावतः शुद्ध हो, आपके अंदर स्वाभाविक शुद्धि तथा दोष राहित्य है, ये व्रात्यस्त्वं प्राण इतने का अर्थ निकलेगा, हे प्राण आप स्वभावतः शुद्ध हो। बाकी एकर्षि इत्यादि पदों की चर्चा हम लोग कल करते हैं। हरिओम।